राज थी ना, फिर किसी देना से राज्य मिलना है, राज्य भी किससे मिलना है, राज्य देने में भी कौन आ जाए। चंबा स्वर्ग की नहीं गाई जाती है, संगम युग की गाई जाती है, लेकिन जगदम्बा की पूजा होती है क्योंकि जगदप्पा उसके ऊपर बैठता हुआ। अगर जगदप्पा न हो तो भारत में विधवाओं की पूजा, विधवाओं की पूजा नहीं होती है। अगर जगदम्बा जगदप्पा को मानेगी तो वर्षा लेगी, अगर नहीं मानेगी तो तब तक उसको वर्षा मिलने वाला नहीं। इसलिए धीरे धीरे राजा जरक की स्थापना के लिए माताओं को निमित्त किया, लेकिन विधवा माता को निमित्त नहीं बनाया। हाँ, विधवा माता नहीं, सधवा माता, जिसके साथ कोई पति बैठा हुआ। चाय बुजुर्ग तो थोड़ी ना, उसका पति मर जाए ऐसा थोड़ी, पति जीवित होना चाहिए। दान मूर्त मर थोड़ा ही सकता है, भले ब्रह्मा मर जाए, ब्रह्मा कुमार कुमारियां मर जाए, लेकिन अकाल मूर्त बाप थोड़ी कर सकता है। अरे कलयुग के अंत में, कलयुग के अंत में सब अम्मा बाप में दुश्मनी हो जाती, ये कोई नई बात क्या है? ये तो दुनिया है, दुनिया कभी तमो प्रधान कभी सतो प्रधान। कलयुग के अंत में जब शूटिंग होती है तो जो स्त्री पुरुष होते हैं वो भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते, नई बात हो रही है। जिंदगी कुछ और नहीं, मेरी तेरी कहानी है, पूजा पिता ब्रह्मा में सारी दुनिया समाई हुई, उनमें जब एका हो जाएगा तो सारी दुनिया में एका हो जाएगा। ब्रह्मा माने क्या, बड़ी अम्मा जगदम्बा, ये क्या है? तो बात समझ में नहीं आई ना, अभी संकल्प एक तो नहीं हुए है ना। कृष्ण को तो सारी दुनिया चोर डकैत कहती है और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहती है, शूटिंग कहाँ हुई होगी? और फिर लड़ाई लड़वाई, इतना ही नहीं और लड़ाई लड़वा दी, क्रिश्चियन से ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन से डायनेस्टी से ही हमको राज्य मिलना, राज्य हमको किससे मिलना? जो क्रिश्चियन से डायनेस्टी के होंगे माने कृष्ण डायनेस्टी के होंगे माने चंद्रवंशी डायनेस्टी के होंगे, और चंद्रवंशियों से ही हमको विजयमाला से ही राज्य मिलेगा। लगन दूसरे लगन में ताकत नहीं है जो राज्य ले सके। कारण है ना, तमो प्रधान बन गए ना, वो झुकना कहाँ पड़ा, उनके सहयोग से राज्य मिलेगा। तो तमो प्रधान बन गए ना, तमो प्रधान झुकने की क्या बात है, झुकने की बात थोड़ी है, ऐसे थोड़े ही कृष्ण जाकर के राधा के यहाँ झुकेगा, राधा को कृष्ण के यहाँ आना पड़े, झुकना पड़े, वो तो परंपरा है। कन्या की जब शादी होती है तो कन्या के घर वाले लड़के वाले के पास जाते हैं, लड़के वाले कन्या के यहाँ आके जो झुकते, वो आएंगे तो भी बारात लेकर के आएंगे, कहेंगे हमको भी खिलाओ और हमारे बारात की भी पूजा करो। इसलिए शंकर जी की बारात गाई हुई है। इस समय क्रिश्चियंस का जोर है, जोर किसका है, क्रिश्चियंस का इस समय जोर है, माना कृष्ण जैसी आत्माओं का इस समय जोर है, उनको भारत से क्रिश्चियंस को माने कृष्ण की सोल को भी मदद कहाँ से मिली, यज्ञ के आदमी भारत से ही मदद मिलती है। अभी भारत भोग मरता है तो जो मददगार बना वो अभी भोग मरता है, भारतवासी भोग नहीं मिल रहे मुरली के एक एक पत्ते के लिए, चारों भीख मांगनी पड़ती है हमको, मुरली का एक पत्ता दे दो, बाबा की एक कैसेट दे दो। ढील दिया ना, इसीलिए तो भूख मरते हैं। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है क्या? हाँ, अभी वो ही कृष्ण की सोल कहो व किचन से जिसकी राशि मिलाई जाती है तो वो ज्ञान धन रहने में सहयोगी बन रहे हैं। यहाँ से बहुत धन और हीरे जवाहरात आदि वहाँ ले गए। कहाँ? पूरब से कहाँ ले गए? पश्चिम। कलकत्ते से पूर्वी बंगाल से कहाँ ले गए? सिंध हैदराबाद अमाउंट आबू पर जहाँ सूर्यास्त होता। बहुत धनवान बन गए। तो अब फिर धन पहुंचाते रहते क्या? हाँ, जितने धनवान बन गए वो सारा धन भारत के पास पहुंचाते रहते। उनको मिलने का तो है नहीं। किनको? जितना वो दे रहे हैं वो उनको अब हमें वापस तो करना नहीं। बड़ी जल्दी खूब लोन लेते जाओ। विदेशी आत्मा ही बाप को प्रत्यक्ष करती और कृष्ण बच्चे के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होता है। तो अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं क्या? तुम बच्चों को तो कोई, यानी क्रिश्चियन से ये कहो कि बाप को पहचान जाए तो वो तो अभी पहचानते नहीं। क्या मतलब? अभी ब्रह्मा की कोई नहीं पहचानती क्या? ये क्यों कहा ब्रह्मा से विष्णु बनेगा कब? एक सेकंड। इसका मतलब वो एक सेकंड अभी भी आया नहीं। अब भी दिल्ली नजदीक नहीं है, दूर है। तो उनको भारत से ही मदद मिलती है। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है। यहाँ से बहुत धन हीरे जवाहरात आदि वहाँ ले गए। उनको मिलना तो है। अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं है। अगर पहचानते तो आकर के तुम बच्चों से राय लेते क्या? पहचानने की निशानी क्या? आकर के तुम बच्चों से राय लें कि कैसे हम दुनियादारी चलाएं। तुम हो ईश्वरी संप्रदाय, जो ईश्वरीय राज्य ईश्वरीय राय पर चलते हो, वो फिर ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम तो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय बनेंगे। हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है। ये बायजोली का खेल है जिसको समझना बहुत सहज। कैसा से खेल है बायजोली माने? जो मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं ना, चक्कर लगाते हैं, तो उसमें गुलाटी मारते हुए जाते हैं। कभी सर नीचे कर देते हैं, कभी पांव ऊपर, कभी पांव नीचे, कभी सर ऊपर। तो बायजोली का खेल है, कभी नीचे कभी ऊपर। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो शूटिंग हो रही है, वो शूटिंग में भी हमारी भी क्या हालत होती है? कभी हम नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर, कभी ऊपर, कभी ये ऊपर नीचे होता रहता है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, परंतु माया हमको भुलाए देती, फिर कई गुणों से आसुर गुणों में ले आती। अपवित्र बनना आसुर गुण है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लिए बच्चों के माता पिता बाप दादा का याद कर। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों।
एक भेड़ गड्ढे में गिरेगी जाके तो सारी उसके पीछे गिर जाएंगी जाके, वरना अपनी अकल नहीं लगाती बिल्कुल। तो दोनों की महिमा अलग अलग है। पुण्यात्माओं की दुनिया देवताओं की महिमा और अजामिल जैसों की दुनिया। हरेक जो ब्राह्मण है वो अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा के पास लिख करके भेजते हैं। कौन भेजते? ब्राह्मण है तो बाबा के पास लिखकर भेजते हैं, अशूद्र है तो बगैर बाबा को बताने के और ही छुपाए लेते हैं। वो लिख करके देखते हैं कितने हमने पाप किए हैं, बाबा के पास सबकी जीवन कहानी। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और फिर सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले न बने तब तक पास न हो सके। और सत्संगों में ऐसे सुनकर के फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं है। और यहाँ बाबा ने बांधा हुआ है तुमको, जो भी सुनने वाले बच्चे हैं उनको बांधा हुआ है कि तुमको दूसरों को सुनाना भी पड़े। आज नहीं सुनाओगे, कल नहीं सुनाओगे, एक दिन तुमको सुनाना ही पड़े, बांधे हुए। यहाँ धारणा करके फिर करानी, फॉलोअर्स बनाने करें, फिर दूसरों को कराएं। खुद धारण नहीं किया और सिर्फ दूसरों को सुनाया तो फिर वो रावण का ज्ञान हो जाता है। तो सुनकर के फिर सुनाना है, फॉलोअर्स बनाने हैं, ऐसे नहीं एक ही पंडित कथा सुनाएगा। यहाँ हर एक को माँ बाप समान बनना है। जब औरों को सुनावे सब पास होंगे। और बाप की दिल पर चढ़ेंगे। नालिश पर ही समझाया जाता है। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता है। ये ला नहीं है कि देवताओं को भगवान कहें, क्योंकि देवताओं के गुणों में और शिव बाबा के गुणों में बहुत फर्क है। देवताओं के गुण बताए, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये गुण परमात्मा को नहीं दे सकते। परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके बैठ जाए तो जो नीच से नीच आत्मा है, ऊंच से ऊंच बननी है, उनको संघ का रंग लग ही नहीं सकता। इसलिए अद्वैत वाणी में बोला है बाप विदेशी बन करके आते हैं। तो राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। वो देवी देवताओं का टाइटल है, उनका टाइटल भगवान भगवती का नहीं हो सकता। कौन से लक्ष्मी नारायण? सचिव के लक्ष्मी नारायण का टाइटल, चाहे पहला हो, दूसरा हो, आठवां हो, उनका टाइटल भगवान भगवती का नहीं हो सकता। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगदम्बा जगत पिता, और उनकी 108 वंशावली, बाबा ने देखा बहुत बड़ी माला होती है। फिर सभी उनको खींचते हैं। तो रुद्रमाला की बात बताई, फिर बड़ी माला भी होती है, कितने की? 16108 की भी माला होती है, जो गरारी पर रखी जाती है। दो दो चार चार मिलकर के उसे खींचते हैं, राम राम कहते जाते हैं। लक्ष्य कुछ भी नहीं, तो भक्ति मार्ग में ये आडंबर क्यों दिखाया गया है? कहाँ की यादगार? कैसे यहाँ भी जब तो बड़ी माला तैयार होती है तो कोई एक नहीं तैयार करता उसे, संगठित रूप में सबकी शक्ति लगती है उन मणकों को खींचने के लिए। रुद्रमाला फेरते हैं, राम राम की ध्वनि लगा देते हैं। ये सब हुआ भक्ति मार्ग। फिर भी और कुछ बकबाद करने से ये ठीक है। फेरते हैं रुद्रमाला और नाम किसका लगा देते हैं? राम राम का। क्यों? क्या त्रेता वाले राम ने वो रुद्र वो माला तैयार की संगठित की? नहीं की तो शिव बाबा ने। फिर नाम राम का क्यों लगा दिया? क्योंकि त्रेता युगी राम वाली आत्मा के ही अंतिम 84वें जन्म में परमात्मा शिव रुद्र प्रत्यक्ष होते। तो भक्ति मार्ग में जो माला आदि फेरते हैं, भक्ति करते हैं, उतना समय कोई पाप नहीं होगा। पापों से बचाने की ये युक्तियां हैं, बाकी पाप भस्म हो जाएंगे ऐसा नहीं। यहाँ तो माला फेरने की बात ही नहीं है, हमको तो माला का स्वयं दाना बनना है। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा। फिर पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं पाप करते हैं व आयु बढ़ती है। यहाँ तो तुम बच्चों के योग बल से पाप भस्म होते और आयु बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है इस पढ़ाई से। यह बात पूछते हैं तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे या राम सीता को? बच्चे भी बेसमझ तो नहीं है। जट कहते हैं बाबा हम तो पूरा इंसान पास करेंगे। माना पूरा इंसान पास करेंगे? माना राम सीता ने कैसे इंसान पास किया? पूरा इंसान किसे कहते हैं? फाइनल एग्जाम। और छमाही त्रैमासिक और महीने महीने में जो एग्जाम होता है वो पूरा नहीं कहा जाएगा। तो राम सीता ने कौन सा पास किया जो उनका गायन हुआ? नहीं, शुरुआत में जो आत्माएं फेल हो गई पुरुषार्थ करते करते तो वो फाइनल में फेल हुई या अधूरा इंसान देकर के फेल हुई? वो तो त्रैमासिक मासिक परीक्षा के हैं। तो बच्चे बेसमझ तो नहीं है। बच्चे पूरा इंसान पास करेंगे या आधे में छोड़ करके चले जाएं? आधी पढ़ाई शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे। फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। जबकि हम आपके बच्चे हैं तो जरूर हिम्मत दिखाएंगे। मम्मा बाबा है मुरब्बी बच्चे शिव बाबा के। हम उनको पूरा फॉलो करके गद्दी पर बैठेंगे। ये शुभ कामना अच्छी है, फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। अब के पुरुषार्थ से ही पता पड़ेगा कि कल्प पहले ऐसे ऐसे किया था। टीचर को तो झट पता लग जाता है। ये है नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। क्या और गीता पाठशाला में ऐसे कभी नहीं कहेंगे? कैसे कि हम तो मैं नर से नारायण बनाएंगे या यहाँ नर से नारायण बनाने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है? न टीचर ही कह सकते हैं क्या कि मैं नर से नारायण बनाऊंगा? और गीता पाठशालाओं में ऐसे नहीं कह सकते। और यहाँ सुप्रीम टीचर क्या कहता है कि हम तुमको नारायण, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए, डॉक्टर कौन बनाएगा? जो डॉक्टरी इंसान जिसने पास किया हो, डॉक्टर हो, वही डॉक्टर बनाएगा। वकील वही बनाएगा जो पहले वकील बन चुका हो, पहले खुद ही डिग्री नहीं ली हुई है पढ़ाने वाले टीचर ने, तो दूसरों को कैसे बनाएगा? तो पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। बाकी गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर हैं जो गीता पाठ करके सुनाते रहते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है कि हम नर से नारायण या नारी से लक्ष्मी बनेंगे। उनके टीचर्स की भी बुद्धि में ये बात नहीं है। कहां भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। किसके द्वारा? मीडिया कौन पढ़ाने वाला? ये सिर्फ एक ही ये गीता पाठशाला है जिसमें कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। वो तो मनुष्य द्वारा पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं मनुष्यों द्वारा? वो तथाकथित ब्राह्मण तो मनुष्यों द्वारा पढ़ते हैं और तुम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच है परम पिता परमात्मा शिव, जो ईश्वर का रचय का नॉलेजफुल है वो ही हमको पढ़ाते हैं। कौन? जो स्वयं स्वरग का रचयता है और ऊंचते ऊंचे, ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे टाइटल कौन सी दुनिया में दिया जाता है? सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में। साकारी दुनिया का ही ये टाइटल है। तो वो ही स्वरग का रचयता आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान सुना के चले जाते हैं, ब्रह्मा के तन में आए और चले गए, नहीं, क्या करके जाते हैं? पतितों को पावन बनाकर सबको वापस ले जाते हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। क्या महिमा गाई है? जप साहब को तो सुख मिले। किसको जपो? साहब को जपो। भक्ति मार्ग में तो राम राम कह के जपते हैं, राम राम का सारंभ लगाते हैं। तुम किसको जपो? साहब को। कौन? साहब के साथ किसे कहा जाता है? साहब बीबी और गुलाम। तो साहब को कौन जपे तो सुख मिले? सुखमनी नाम क्या रख दिया ग्रंथ का? सुखमनी। मन में सुख कब हो? जब बीबी साहब को जपे। अब तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचे सच्चा साहब तो वो है, बाकी तो सब हो गए। ऊंचे से ऊंचे के मुकाबले क्या कहा जाएगा? नीचे कहा जाएगा। बाकी सब है झूठे। वो खुद कहते हैं बाप कि मुझ बाप को याद करो। कहते हैं मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तिजरी की कथा सुनाता हूँ। क्या कहते हैं सच्चे बाप? कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा सच्चा साहब हूँ, बाकी तो सब है झूठे साहब। तो ये नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने की। क्या जो नॉलेज है की कथा है, तिजरी की कथा, तीसरा नेत्र मिलने की कथा किसकी यादगार है? तीसरा नेत्र यादगार किसकी है कथा? शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता, अथवा नर से नारायण बनने की कथा, अब चाहे शंकर कहो चाहे नरसे नारायण कहो, तो हे पार्वतीयो मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, क्योंकि पार्वतियों की ये बात तो पता ही नहीं है, है? क्या बताए, फिर बताएं, हे पार्वतीयो मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं सुना रहा है। ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, पार्वतियां ये बात भूल जाती है, वो किसको देख लेती है, शरीर को देखती है, शरीरधारी को देखने लग पड़ती है, उसकी कमियों को देखने लग पड़ती है। देखना किसको चाहिए, ऊंचते ऊंच शिव बाबा को देखना चाहिए, उसी से प्राप्ति होनी है। फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी, तो नंबर बारह ऐसे चलिए, समय भी सतोरजो तमो होता है ना, ये बातें कोई भी नहीं जानते। बाबा बहुत गुई गुई ये बातें सुनाए रहे हैं, आत्मा में अविनाशी पार्ट है, इतना गुई गुई नए नए पॉइंट सुनाने का ये शिव बाबा में ही पार्ट है, पार्ट नहीं बजा सकती। ये भी एक पहचान है शिव बाबा के पार्ट की, क्या क्या और मनुष्य आत्माएं ज्ञान तो सुनाएंगी, लेकिन वही शास्त्रों का घेटा घेटा पेटा ज्ञान, वही मुरलियों का पुराना ही ज्ञान सुनाएंगी, नई बात कोई नहीं सुना सकती। तो अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते हैं वो भी तुमको समझाई दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूं, किसने कहा, शिव बाप ने कहा कि मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ, और बाकी तो सब कामना वाले हैं, कामी काटे हैं, तो तुम किसको देखो, तुम निष्कामी बाप को देखो, तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूं, तो तुमको पावन कौन बनाए, क्या माना पार्वतियों की संशय हो जाता है, किस बात का संशय हो जाता है कि ये भी महाकामी है, कामना वाला है, ये भी हाँ ये भी पतित बनता है, तो सभी की पुकार कौन सुनेगा फिर, अगर ये भी पतित बने, पतित पावन फिर किसको कहा जाए। ये बात समझाते हैं कि बुदबुदा पानी से निकलता है, बुदबुदा जानते सागर में जो उफान आता है तो बुलबुले बन जाते हैं, फूटते हैं, बनते हैं। सब आत्माएं परमात्मा बाप के ज्ञान में ही मिक्स हो जाती है, जो बाप की बात, जो बाप का संकल्प, तो जो बाप का ज्ञान, वही आत्मा में ज्ञान समा जाता है। यानी कोई भी आत्मा का संकल्प बाप के संकल्प से विपरीत नहीं रहेगा जब आत्मा वापस जाएंगे। जिसके अंदर विपरीत संकल्प चलते हैं वो अंदर अंदर मन ही मन में गुदगुदाता रहता है। तो बाप कहते हैं ये जो तुम्हारे विपरीत संकल्प चल रहे हैं वो सब सागर में समाये जाते हैं। आत्मा कभी मरने वाली नहीं है जो सागर में मिल जाएगी, हर आत्मा में वो ही संकल्प चलेंगे, विरोधी या अवरोधी, जो उस आत्मा में समाये हुए होंगे। जिन आत्माओं ने जैसा जैसा 63 जन्म 84 जन्म पार्ट बजाया है वैसा ही शूटिंग पीरियड में यहाँ उनके अंदर वो संकल्प इमर्ज होते हैं। तो आत्मा इमॉर्टल है, वो कब जलती नहीं है, घटती नहीं है, घटती नहीं। तो हमने जो कुछ बेकरी से संकल्प चला लिए, वो संकल्प हमारे अगले कल्प में न चले, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। तो ऐसा हो नहीं सकता। जो शूटिंग न्यूड कर ली वो तो कर ली, वो जल नहीं सकते, वो संस्कार कट नहीं सकते, घट भी नहीं सकते। माना जितना जिसने जो जैसे विपरीत कर्म किए हैं बाप के, कर्मों के विपरीत, जैसा बाप कर्म नहीं कराना चाहता वही कर्म किया, बाप जो संकल्प नहीं चलाना चाहता, चलवाना चाहता वैसे ही संकल्प चलाए या वाचा चलाई, तो वो उनका जन्म जन्मांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए आत्मा में वो संसार मूड हो जाता है, वो घट नहीं सकता। तो बाप इन सब बातों की समझाने देते हैं शास्त्रों में, जो भी बातें आई हैं। कौन कौन सी बात बताई अभी? कि बुदबुदा पानी में मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसका अर्थ है आत्मा सब जलती नहीं है, घटती नहीं है, कटती नहीं है, घटती नहीं है। तो तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए इस बात की। हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं। कौन से बल से? प्रीति बल से। राजधानी स्थापन हो रही है, उनका प्लान बताए देते हैं। तो राजधानी स्थापन होने की प्लानिंग क्या है? सूर्यवंशी में इतनी गद्दी, चंद्रवंशी में इतनी गद्दी। जो नापास होते हैं वो जाकर के दासवासी बनेंगे। सब कुछ बताई दिया, प्रति प्रेता में उपन राजाएं बनेंगे, नापास होने वाले दासवासी बनेंगे। जो बाप के पक्के बच्चे बनते हैं दास दासियों से फिर नंबर वार राजा रानी बनते हैं। क्या मतलब? नंबर वार किसके मुकाबले का? दास दासियों के मुकाबले। वनस्पत जनन में जो दास दासी बनेंगे राधा कृष्ण के, वो तो क्या बनेंगे? आगे जाकर के राजा रानी भी बनेंगे। अन पढ़े पढ़े के आगे भरी होते, जिन्होंने जैसा जैसी जैसी पढ़ाई पढ़ी है वैसा वैसा पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी कहाँ से आएंगे? सम चुका है क्या? बड़ा मान रहता है, बड़े महलों में अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे बॉम्बे में आते तो थोड़े सिर पर एक दूसरे के चढ़कर बैठते होंगे, सोते होंगे। बंधन क्या होता है? एक कमरा, उसमें सब चारपाई के ऊपर चारपाई लगा दी तो सो जाते हैं। बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बस मंजिलों वाले मकान नहीं होते वहाँ। तो नीचे का आधार ले तो पाई बिल्डिंग नीचे गिर जाए, महलों का मतलब क्या हुआ? संगठन रूपी महल ऐसे नहीं होते कि एक संगठन फिर उसके ऊपर दूसरा संगठन फिर उसके ऊपर तीसरा संगठन। क्योंकि आज सबसे छोटा न्यायालय कौन सा माना जाता है? पंचायत, फिर उसके ऊपर न्यायालय, फिर उसके ऊपर और न्यायालय, फिर उसके ऊपर और न्यायालय। ऐसे यहाँ भी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी एक कंट्रोलर, एक तो घर घर में कंट्रोलर, फिर गीता पाठशाला का कंट्रोलर और उसका संगठन, फिर सेंटर का संगठन, फिर म्यूजियम का संगठन, फिर जर्नल इंचार्ज का संगठन, फिर थर्ड ऑफिस माउंट आबू में संगठन। तो एक के ऊपर एक संगठन बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं होता, वहाँ एक राजा और एक ही धर्म होगा, सब का कंट्रोल एक के द्वारा। तो बड़े बड़े बगीचे होते हैं, वहाँ दो मंजिल बनाने की दरकार नहीं रहती, एक ही मुखिया होगा। अभी तो क्या घर घर में क्या है अभी है? सारा परिवार, सारी दुनिया में एक ही परिवार होगा और उसका एक ही मुखिया होगा। अभी तो क्या घर घर में क्या है अभी है? घर घर में अब दो दो तीन तीन, अगर कहीं बड़ा बच्चा हो गया तो बड़ा बच्चा अपनी अलग खींचता है। तो सच बुला ऐसा नहीं होता, जमीन बहुत पड़ी रहती है। क्या तो देखो जमीन की कितनी कीमत बढ़ती जाती है, वहां पैसे की तो कमी नहीं, बड़ा शौक रहता है बनाने का। जैसे आदि मनुष्यों को शौक रहता है ना, न्यू दिल्ली बनाई तो समझते हैं कि ये नया भारत है। अब न्यू दिल्ली है, वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को न्यू दिल्ली कहेंगे, पुराना भारत नरक को कहेंगे। तो पुराने भारत में तो कैपिटल आ गया, ऐसी होती नहीं, जितना विश्व चाहिए होगा तो सब ड्रामा अनुसार क्यों नहीं बने, क्योंकि हमने रचना शरद को तो कृष्ण को भगवान समझ लिया, तो स्वर्ग के मालिक नहीं बने। और अभी तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है, तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी भी जानते हो। बायोग्राफी जीवन कहानी कहाँ की होती है, सूक्ष्म वतन की होती है या मूल वतन की होती है, साकार वतन की होती है। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो परमपिता परमात्मा शिव, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सब इस शक्ति पर आकर के कोई न कोई पार्ट बजाते हैं, तो उनकी जीवन कहानी बनती है। ब्रह्मा कितने जन्म लेते तुमको मालूम है, बाप कहते ये माता है स्वर्ग का द्वार खोलने वाली, बाकी सब नरक में पड़े हुए, माताएं ही सबका उद्धार करेंगी। हम परमात्मा की महिमा करते हैं, क्या बात है, माताओं की महिमा की या परमात्मा की महिमा की, दो की महिमा होगी, परमात्मा की क्या होगी, क्योंकि परमात्मा ही आकर के माताओं को शिव की शक्ति बनाते हैं। तुम समझ करके कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते, आप आकर हमें वारिस बनाते हैं, शरद का मालिक बनाते हैं, ऐसे शिव बाबा को नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते ही हैं, पर बाप भी कहते बच्चे नमस्ते,
द्वापर कलयुग में ब्रह्मा और ब्राह्मण थोड़े ही होते हैं, जो ब्रह्मा की रात और ब्राह्मणों का ब्राह्मणों की रात कहीं गए, लेकिन पीरियड की बात है जो शास्त्रों में लिखी हुई है। ब्रह्मा का दिन जरूर ब्रह्मा भी होना चाहिए तो ब्राह्मण भी होने चाहिए। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा जब साकार में प्रत्यक्ष है तो दिन है, और जब आंखों से ओझल होता है तो रात होती है, तो ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा की जब रात होती है तो ब्रह्मा भी अंधेरे में और ब्राह्मण भी अंधेरे में आ जाते हैं, वो भी सोकर खाते हैं, कभी नित्य है कभी अनित्य है, अनित्य होता है तो दरदर भटकते हैं। ब्रह्मा मुकुंद सवली के लिए ही रात और दिन गाया जाता है। विष्णु के फॉलोअर वैष्णव एक मात्रा बड़ी तो पांडव किसी औलाद हुए, पंडा, पंडे का अर्थ ही है ले जाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, ऐसे नहीं बदर छो करें खानी पड़े। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, पांडव राज नहीं कहेंगे, पांडव राज्य नहीं करते, राज्य न पांडवों को है न कौरवों को है, दोनों को साथ नहीं है। पांडव कौरव का भी होते हैं जो साथ नहीं होता, न कत्य को चेता में न द्वापर कलयुग में। पांडव तो होते ही तब है जब पांडव बाप आता है, तो दोनों को राज्य नहीं होता, कलयुग के अंत में राजा ही होती है। भक्ति मार्ग ने दोनों को साथ दे दिए, दोनों को क्यों दे दिया भक्ति मार्ग में साथ? दुर्योधन को शासन को भी शादी दिखाई देती है, रावण को भी शादी दिखाई देती है, क्यों? क्या संगम किया गया? तो जिम्मेवारी का साज तो दोनों ने उठाया है, ऐसे नहीं कि सिर्फ पांडवों ने जिम्मेवारी उठाई है यज्ञ की, कौरवों ने भी साज उठाया है। विचार सागर मंथन तो आगे पीछे सभी ने किए है। बाबा कहते हैं अगर ताज दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे और पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि दोनों पुरुषार्थी हैं। कांस्टेंट लाइट का ताज किसी का टिकता नहीं, अभी अभी बहुत ऊपरी स्टेज है, अभी अभी स्टेज नीचे हो जाती है, चलते चलते गिर पड़ती है, तो ताज किसको देवे? इसलिए ये सब निशानी विष्णु को दे दी, क्योंकि वो पवित्र है। चतुर्थ में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं और खिवैया भी है, ऐसा क्यों नहीं है? है क्या खेलता है? चिवैया तो नवैया खेलता है, नवैया कौन सी हुई? ये शरीर रूपी नवैया है, इसको लेकर बैठे नदी से प्रयास कराने का रास्ता बताता है। ये शरीर रूपी नवैया को खेलने वाला भी है और पति तो पावन भी है। पति की क्या हुई, आत्मा या शरीर? दोनों ही पतित हो गए, आत्मा को भी पतित को पावन बनाता है तो पतित पावन कहा जाता है। कहाँ आए तुम लोग भी थे? भगवान आए ही है कांटों के जंगल में, फूल उनको मिलते ही नहीं, गीत क्या बना दिए? मिले न फूल तो कांटों से ही दोस्ती करी, तो समर्थवान है ना, क्या करेगा? कांटों को ही फूल बनेगा, कांटों को ही फूल बनेगा। जब समय होता है तो लड़ाई लगती है, कहते हैं शंकर की पेड़ ना तो मूसल आदि बनाते, शंकर नहीं बनाता, बनाने वाले दूसरे, लेकिन कहते हैं कि शंकर की पेड़ ना तो मूसल आदि बनाते हैं, बम्स बनाते हैं। तो ये सब कहानियां बैठ बनाई है, कहाँ की यादगार है? कैसे तो नूंगा रूपी बम्स बनाने के लिए शंकर कहते हैं कि तुम नूंगा रूपी बम्स बनाओ? अरे देवता होगा तो कंस्ट्रक्टिव कार्य करेगा या डिस्ट्रक्टिव कार्य करेगा? कल्याणकारी कार्य करेगा ना, तो ऐसे क्यों कह दिया कि वो कहते हैं यादवों से? यादवों के कान में आकर के कहते हैं कि तुम बम बनाओ, बड़े बड़े महारथियों की निंदा उसकी बम बनाओ, बुद्धि से प्रेरणा मिलती है। अच्छा तो बाबा प्रेरणा नहीं देते, हमको प्रेरणा देते हैं। अगर देते नहीं है तो भक्ति मार्ग में गाया क्यों हुआ? कैसे प्रेरणा मिलती है, फिर ये भी समझना पड़े समझाना पड़े। उन यूरोपवासी यादवों को जो रूप में वास करते हैं उनको कैसे प्रेरणा मिलती है कि निंदा रूपी बम्स बनाए। जैसे वो बम्स होते हैं फूल, तो उनमें भी ऐसा मसाला भरते हैं कि थोड़ा सूंघने मात्र से ही खेल खराब हो जाता है। तो ये भी निंदा रूपी बम्स हैं, बड़े बड़े महारथियों की लूपोल से जिसमें भरी हुई होती है। जब विनाश होगा तो जो बड़े बड़े महारथियों का आधार लेकर के चल रहे हैं, दीदी दादी दादाएं, उनकी बड़ी लंबी चौड़ी दुनिया है, किसी की बात नहीं मानेंगे, दीदी दादी दादाओं की मानेंगे। तो जो ऐसे अंधश्रद्धा युक्त होकर के चल रहे हैं, परमात्मा बाप की भी परवाह नहीं करते। उनके सामने जब वो बम्स फटेंगे तो जो सारी श्रद्धा विश्वास बैठा हुआ है वो सब उखड़ जाएगा। और शुष्क आत्माओं की स्थापना होगी, निष्पक्ष आत्माएं चली जाएगी। तो ये जो कहानियां बनाई हुई है कि शंकर बैठ प्रेरणा देते हैं, ये कैसे साबित होता? अच्छा, विनाश की घोषणा कौन से संत से कराई गई है? इसकी शिक्ष में घोषणा कराई गई, दस वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी। तो 76 में पुरानी दुनिया का विनाश हुआ? नहीं हुआ। जब 76 में पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हुआ स्थूल रूप में, जिनकी स्थूल बुद्धि थी उन्होंने उसका स्थूल अर्थ लगाया, हद की बुद्धि थी हद का अर्थ लगाया, विकारी बुद्धि थी तो विकारी दुनिया के विनाश का अर्थ लगा लिया। लेकिन ये नहीं समझा कि बाबा ने मुरली में बोला है कि विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी तो विनाश यज्ञ कुंड में पहले होगा कि बाहर की दुनिया में होगा? यज्ञ कुंड के आसपास बैठने वाले जो सत्य ब्राह्मण होंगे वो पहले ढील करेंगे, खलास होंगे। तो 76 से ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तीसरा नेत्र खुलता है और दुनिया में आग आग लगी। तो जिनको निश्चय उखड़ चुका था कि बाबा ने तो झूठ बोला कि पुरानी दुनिया विनाश होगी 76 में और नई दुनिया की स्थापना हुई होगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उनको बाबा की मुरली से निश्चय उखड़ जाता है, बाबा के ज्ञान से निश्चय उखड़ जाता है। जैसे दुनिया में ब्राह्मण लोग सिर्फ पेट का धंधा करते हैं, रामायण पढ़ेंगे गीता पढ़ेंगे लेकिन उससे हाथों से उनका कोई कनेक्शन बुद्धि का नहीं रहता, सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए अपना पैसा कमाने के लिए पेट पूर्ति के लिए धंधा चलता है। तो ऐसे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी शुरू हो गया। अब रही बात सर्विस की, जब निश्चय उखड़ गया तो सर्विस क्यों करेंगे? करेंगे, सर्विस तो नहीं करेंगे। मैं दिल की इच्छा सर्विस करने की नहीं है, लेकिन एक नई पार्टी निकल पड़ती है तो उसका मुकाबला करने के लिए, अपने जिज्ञासुओं को अपने में अटकाए रखने के लिए उनको फिर प्रेरणा मिलती रहती है कि हम भी कुछ ऐसा ही करें। अब ये तो समझते नहीं कि शंकर को महादेवता कहा जाता है तो वो तो ज्ञान का कंस्ट्रक्टिव वर्क ही करेगा या डिस्ट्रक्टिव वर्क करेगा। ज्ञान से तो स्थापना होती है, ज्ञान से विनाश नहीं होता। अब ज्ञान उनकी समझ में आता नहीं, वो समझते हैं ये तो बहुत बड़ा अज्ञान है, ये तो बहुत गलत बात सुनाई जा रही है, इससे तो विनाश हो जाएगा, ये भी बुद्धि में बैठता है, ये तो हमारा विनाश कर रहे हैं, हमारी ईश्वरीय संस्था बर्बाद हो जाएगी। ईश्वर को विनाशी है या अविनाशी है? तो ईश्वर अविनाशी है तो इसकी रचना भी कैसी होगी? अविनाशी होगी, कोई ताकत है तो उसे विनाश कर सके? दुनिया में पूरे धर्म संप्रदाय फैले हुए, किसी में ताकत आई कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों का मुकाबला कर सका होता? कोई ब्रह्मा कुमारों को तोड़ करके अपने धर्म संप्रदाय में मिक्स किया होता? नहीं। तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, वो गलत फहमी बुद्धि में बैठ जाते हैं। क्या ये पार्टी तो विरोधी पार्टी है? शिव बाबा का ईश्वरीय संप्रदाय नहीं है, ये कोई आसुरी संप्रदाय है जो हमारी ग्लानी बैठ कर रही है। कार्य क्या करेंगे, जिस तरह की करेंगे चाहे, वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, जब देखते हैं कि कार्य संपन्न नहीं होता है हमारा, तो जो अंदर अंदर जिनके प्रति विष भरा हुआ है वो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लग पड़ते, और दोषारोपण करने से क्या होगा, एक दूसरे की खामियां निकालेंगे। जब एक दूसरे की खामियां निकालते हैं, दोषारोपण करते हैं, तो उसको दुनिया का स्वतः ही विनाश हो जाता है। ऐसे नहीं कि शंकर या शंकर पार्टी जिसको कहा उन्होंने, उसके अंदर ये भावना भरी हुई होती है कि इनका विनाश हो जाए। क्या ये बात सत्य है? उनके अंदर ऐसी भावना है नहीं? ये भावना तो अज्ञानियों की बात हो गई। ज्ञानी तो वो जो दुनिया में भी किसी का अपनी आंखों के सामने विनाश होते देख न सके, किसी का बुरा हो रहा है तो उसको संभाले, बाजू के घर में आग लग रही है, घरों में आग लग रही है, तो उसका भाव ये नहीं होगा कि ये तो विनाश होना है इसलिए आग लगने दो। ये कोई कल्याणकारी व्यक्ति नहीं हुई, ये कोई ज्ञान की व्यक्ति नहीं हुई। तो वो समझते है भक्त लोग, भक्त माना अज्ञान अंधकार में रहने वाले, भक्त माना अंध श्रद्धा में रहने वाले, वो ऐसा समझते हैं कि शंकर ने ऐसी प्रेरणा दी तो ये विनाश हुआ। शंकर ने अपने घरों को भड़काया कि जाकर के शंकरों का विनाश कर दो, तो ऐसा हुआ। अब देखते हैं कि शंकर के घर विनाश करते वास्तव में विनाश हो रहा है, तो समझते ये भी कल्याणकारी काम है, विनाश करना भी कल्याणकारी है, इसलिए चलो हम ही क्यों न कर दे। आपस में संस्कार तो टकराते ही है, मेल तो होता ही नहीं है, मामला तो और ही ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है, तो स्थापना तो बिचारे कर नहीं सकते, तो स्थापना न करी तो कल्याणकारी विनाश करना तो सहज है, तो अपने ही कुल का ध्वंस ध्वंस कर ले। तो अपने कुल का ध्वंस, जो अपने परिवार के लोग हैं उन्हीं की खामियां निकालना, उन्हीं का परिचिंतन करना, उन्हीं की ग्लानी करना, वो सारी बातें इकट्ठी करना, सारे प्रूफ इकट्ठी करना, ये फिर उनके अंदर चलता है, ज्ञान सारा बुद्धि में तोड़ जाता है, परमात्मा की वाणी के प्रति लगाव नहीं रहता, मूल्य के प्रति दबाव नहीं रहता बुद्धि में, देहधारियों की तरफ, देहधारियों की बातों की तरफ रुझान ज्यादा हो जाता है, तो विनाश को पाते हैं बुद्धि। तो वास्तव में शंकर विनाश नहीं करता, ब्राह्मणों की कहीं संघ विधि दुनिया में भी जो विनाश होता है वो शंकर नहीं करता, या जो भी गण है जिनको रुद्रगण कहा जाता है, रुद्रमाला चुमन के राजा बनने वाली आत्मा, वो अपने राज परिवार को बनाने का उपक्रम करेंगी या विनाश करने का उपक्रम करेंगी? बनाने का करेंगी। हाँ, नंबर बार तो होते हैं, कोई विदेशी धर्मों के बीज है, कोई स्वदेशी धर्मों के बीज है, जिन्हें विदेशी धर्मों का बीज है वो उस तरह से कुछ न कुछ आचरण करेंगे जरूर, लेकिन अंत में तो उनको चेंज होना ही होना। जो विदेशी धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है वो छिलका उतरना जरूर है। तो कहने का मतलब यह है कि शंकर या शंकर के गण नहीं विनाश करते, ये सिर्फ भक्ति मार्ग में समझ बैठे हैं कि शंकर विनाश की प्रेरणा करता है। मकान पुराना होता है तो अपने आप ही गिर पड़ता है, इसमें कोई प्रेरणा करने की बात क्या है? मनुष्य मर जाते तो ये भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं बिठानी पड़ेगी, और इज्जत भी जाएगी, डबल घाटा हो गया। एक तो सजा की सजा खानी पड़ेगी, इज्जत की इज्जत जाएगी और पद का पद वो भी कम हो जाएगा। पिछाड़ी में साफ साक्षात्कार होंगे, साक्षात्कार हो जाएगा तो हम किसको लिखे, शास्त्रों में हमारा गायन और रूप किस रूप का दिया हुआ है, आत्मिक रूप दिया हुआ है या दैवी रूप दिया हुआ है, दैवी रूप सबका दिया हुआ है, ये सबको साक्षात्कार होगा कि हम किस कुल के हैं, आत्मिक कुल के हैं या दैवी कुल के, परंतु फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, भले क्रोध आता रहे लेकिन कुछ भी कर नहीं सकेंगे। जैसे नारद को क्या हुआ, नारद के सामने सीता रख दिया गया तो नारद को बहुत क्रोध आया, लेकिन क्रोध आने पर कुछ भी हुआ नहीं। सीता कौन सा है, ज्ञान ही दर्पण है, ज्ञान के दर्पण में हर आत्मा अपना अपना चेहरा देखेगी, दूसरों का भी देखने में आएगा, अपना भी देख सकेंगे, अभी भी देख रहे हैं। नाम दे दिया नारद का, नार माना जल, ज्ञान जल, और दम माना देने वाला। ऐसा नारद जब दूसरों को ज्ञान जल देता है, दूसरों को कहता है चलो वैकुंठ, चलो वैकुंठ, खड़काले भक्ति जाते हैं, लेकिन खुद नर की दुनिया में ही चक्कर काटते रहेंगे। दूसरों को ज्ञान देंगे लेकिन खुद वो ज्ञान की धारणा नहीं होगी। तो बाप कहते हैं ऐसा साक्षात्कार होगा, उस समय कुछ भी नहीं कर सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया, क्या तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, तुम्हारे पाप अब रह गए, अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, तो कोई कहे अच्छा जल्दी जल्दी हम पढ़ाई पढ़ लेते हैं, तो टाइम ही नहीं रहेगा, सोच करेंगे अरे ये हमने क्या किया है? क्या करेंगे, आप सोच करेंगे कौन सा चित्र बना हुआ है, अफसोस का कोई अफसोस का चित्र ऐसा बना हुआ है, अरे हमने ये क्या किया, महाकाली का। जब कोई को भूल का पता चलता है अचानक तो जीभ निकला था। ये क्या हुआ, तो आखिरी चेहरा डिक्लेयर हो जाएगा, सोचेंगे ना तो हमने टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़ेगी, तो कुछ हो थोड़े सकेगा, ना पास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं रहेगी, उसको पढ़ाई में तो ना पास होकर के फिर पढ़ते हैं, ये तो फाइनल जब एग्जाम हो जाएगा तो पढ़ाई तब की पूरी हो जाएगी। अंत समय में पश्चाताप न करना पड़े उसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे अच्छी रीत पढ़ लो, धर्मोई धर्मोई में अपना टाइम व्यर्थ मत करो, टाइम धर्मोई धर्मोई क्या होता है, माने आपस की लड़ाई झगड़े में अपना टाइम व्यर्थ मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है, चोरी कभी नहीं की होगी वो भी कराएगी, इस जन्म में तो चोरी नहीं की होगी लेकिन पूर्व जन्मों में तो कोई ने चोरी की होगी, अगर पूर्व जन्मों में भी चोरी की है तो वो संस्कार कभी भी उदय उदय हो सकता है। पीछे स्थिति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया, पहले देर में दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाओ, अब बुद्धि तो मिली है, कौन सी बुद्धि मिली, ईश्वरीय ज्ञान की बुद्धि तो मिली है कि ये बात राइट है या रंग है, ये चीज उठाओ तो रंग होगा या राइट होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा, तो अब क्या करना है? पवित्र रहना तो अच्छा है ना, चीज उठाने की बात में पवित्र रहना कहाँ घुस गया। संग में आकर के लूज नहीं होना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का जिनको सही परिचय नहीं मिला हुआ है उनको वो परिचय देना, ये है अच्छे से अच्छा काम। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए आराम करने के लिए